बिल्कुल الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 5 سے آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر ہم پڑھنا شروع کریں گے آج، معارف و مسائل. تو صفحہ نمبر جو ابھی شیئر ہوا ہے 479، تو اس کے اوپر معارف و مسائل ہیں ان دو آیات کے. خلاصہ تفسیر پچھلی کلاس میں پڑھ کے مکمل کر لیا تھا. بیسیکلی ایک دفعہ ذرا اس خلاصہ تفسیر کو دہرا لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ترجمہ بھی دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس پر تصرف نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو کہ شرعاً مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے. اور عہد جائز کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے. عہد میں وہ تمام عہد بھی داخل ہیں جو بندے نے اپنے اللہ سے کیے ہیں، اور وہ بھی جو کسی انسان سے کیے ہیں. اور ناپنے کی چیزوں کو جب ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کی چیزوں کو صحیح ترازو میں تول کر دو. یہ فی نفسی ہی بھی اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیک نامی کی شہرت، جو ترقی تجارت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا بیسیکلی ترجمہ اور خلاصہ تفسیر. ظاہر ہے دوبارہ اس کی تشریح کرنا شروع کریں گے تو پھر پچھلی کلاس کی ریپیٹیشن ہو جائے گی. ابھی جو ہے وہ معارف و مسائل میں ان کی تشریح کا انتظار کرتے ہیں. ایک ایک آیت کی، ایک ایک لفظ کی انشاءاللہ الگ الگ تشریح آئے گی. تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں تین حکم، 9، 10 اور 11، مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں. سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا، یہ مالی حقوق کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ کو امید ہے یاد ہوگا اور دھیان ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ احکامات بیان کرنے شروع کیے تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، اسراء اور معراج کا تذکرہ تھا، لیکن پھر احکام شروع کیے. اور احکامات میں سب سے پہلا حکم کیا تھا، یہ تو 9، 10 اور 11 اس میں پڑھیں گے نا. پہلا کیا تھا؟ عقیدہ. عقیدہ، اب عقیدہ جو ہے نا، یہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عقیدہ اللہ کے بارے میں. تو عقیدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو گزشتہ سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا، تو عقیدے کا تعلق کون سے والی جسمانی، یعنی کون سے عضو جسمانی سے عقیدے کا تعلق ہے؟ عقیدے کا تعلق آنکھوں سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ آنکھ سے یہ والا عمل کرو تو تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا، کان سے یہ والا عمل کرو تو تمہارا عقیدہ صحیح ہوگا، یا عقیدہ کوئی ایسا عمل ہے جو کہ ہاتھ پیر سے کیا جاتا ہے. جیسے نماز ایک عمل ہے نا، یہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر ہاتھ آگے باندھ لیتے ہیں اور پیروں سے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. پیر کا عمل کیا ہے نماز میں؟ کہ پیر سے کھڑے ہوتے ہیں. زبان کا عمل کیا ہے؟ کہ زبان سے تلاوت کرتے ہیں. आंख का अमल किया है नमाज के अंदर कि आंख से जो है वो सजदे की जगह पर देखते हैं और घुटनों पर देखते हैं और टखनों पर देखते हैं, वह फलानी मतलब इसके अलावा जहां जहां नमाज में, यानी आंख का भी एक अमल है नमाज के अंदर, ठीक है ना। तो नमाज एक जिस्मानी और बदनी इबादत है, बात समझ में आती है, ठीक है। उसी तरह से जो है वो वालदेन के साथ हुस्न सलूक करना, तो उसके लिए भी जुबान से अच्छी बातें करना, वालदेन के साथ हाथ पैर से उनकी खिदमत करना, ठीक है ना। हुस्न मुआशरत में सिला रहमी, ये तीसरा हुक्म था, ठीक है। तीसरा हुक्म क्या था? सिला रहमी, तो रिश्तेदारों के घर चल के जाना, जुबान से उनके साथ जो है वो अच्छा कलाम करना, तो ये जिस्मानी इबादत समझ में आती है, ठीक है। फजूल खर्ची से बचना, तो ये भी एक गोया के बदनी और जिस्मानी मामला होता है कि भाई ठीक है, आप जो है वो फजूल अगरचे के उसका ताल्लुक माल से भी काफी है, फजूल खर्ची का ताल्लुक माल के साथ है, लेकिन ठीक है, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब से जो है वो पैसे निकाले और फिर किसी दुकान में चल करके गए और दुकान में जाकर के उस पैसे को दुकान वाले के हवाले कर दिया, तो चलें ये भी एक जिस्मानी और बदनी इबादत हो गई, बदनी मामला हो गया, ठीक है। अकीदे का क्या ताल्लुक है? अकीदे का किस किस चीज के साथ ताल्लुक है, ठीक है। अकीदे में तो आपने कोई उठक बैठक नहीं करनी होती, अकीदे के लिए तो आपको कोई चलना फिरना नहीं होता, अकीदे के लिए तो आपको हाथ से कोई काम नहीं करना होता, तो अकीदे में जिस्म का कौन सा उज, ठीक है, इन्होंने लिखा दिल से मानना, ठीक है। दिल, अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ होता है, ठीक है, दिल के साथ होता है, इसको झुटला तो नहीं सकते, गलत तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जरा आपने थोड़े से सादा जुबान से मैं अगर इसको कहा जाए, ठीक है, जो कि ज्यादा लोगों के समझ में आ सके, क्योंकि दिल जो है ना ये बड़ा एक, यानी बड़ी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, तो भाई ज्यादा आसान इस ये नहीं है कि अकीदे का ताल्लुक जो है वो दिमाग के साथ है, जी राइट, दिमाग जिसको कि जहन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, अकल के साथ है। अकल कहाँ पर होती है? जहन के अंदर होती है, और जहन इंसान का वो दिमाग उसकी जगह होती है, जहन की जगह जो है वो दिमाग होता है, बस बेसिकली दिमाग, ठीक है, यानी सर, सर के अंदर जो है वो दिमाग है, दिमाग के अंदर जो है वो अकल है, और इसी के ख्यालात को जहनी ख्यालात कहते हैं। तो अकीदा जो है ना, अकीदा ये खालिसतन एक दिमाग का अमल है, अकल का अमल है या जहन का अमल है, ठीक है। तो दिमाग भी तो जिस्म ही, जिस्म का हिस्सा ही है ना, बदन का हिस्सा ही है ना दिमाग भी, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई उठक बैठक नहीं करनी पड़ती, ये सिर्फ और सिर्फ सोच की एक चीज है। अकीदा क्या है? सोच, ठीक है, अल्लाह के बारे में अकीदा, तो इसको आसान जुबान में क्या कहा जाएगा? अल्लाह के बारे में आपकी क्या सोचें हैं, ठीक है, अल्लाह के बारे में आपकी क्या सोचें हैं, सही है। क्या आपकी सोच ये है कि अल्लाह ताला किसी दिन नाउज बिल्ला पैदा हो गया, राइट, अल्लाह ताला किसी दिन नाउज बिल्ला अल्लाह ताला दुनिया से खत्म, मतलब अल्लाह ताला खत्म हो जाएगा, क्या ये आपकी सोच है अल्लाह के बारे में? या ये सोच है कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है ना, लम यलिद वलम यूलद, क्या ये आपकी सोच है अल्लाह के बारे में कि ना जो है वो उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गिया, ठीक है ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है, उस जैसा कोई भी नहीं है, क्या ये आपके अल्लाह के बारे में सोच है? अगर ये सोच है तो बिल्कुल सही सोच है, तो इसको कहेंगे कि अल्लाह के बारे में आपका अकीदा सही है। और अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो पूरा काम खुद नहीं कर सकता, नऊज़ बिल्ला, खुद पूरा काम नहीं कर सकता, उसको मददगारों की जरूरत है, मददगारों के बगैर अल्लाह का काम नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये अल्लाह के बारे में आपकी सोच गलत है, इसी को कहते हैं कि अल्लाह के बारे में आपका अकीदा गलत है, ठीक है। तो अकीदा जो है ना ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी, यानी मुबहम किस्म की और बड़ी बड़ी, यानी अनक्लियर किस्म की चीज है कि ये क्या बला होती है अकीदा, अकीदा किस बला का नाम है, लोगों को नहीं पता होता, ठीक है ना। तो इस वजह से बिल्कुल साफ रहे इस मामले में, बिल्कुल क्लियर रहे कि अकीदा कोई भयानक किस्म की, कोई डरावनी किस्म की, कोई अजीबोगरीब किस्म की चीज का नाम नहीं है। अकीदा सिर्फ सोच का नाम है, सिर्फ सोच का नाम है कि आपकी सोच अल्लाह के बारे में क्या है, आपकी सोच मलाइका के बारे में क्या है, आपकी सोच रसूलों के बारे में क्या है, आपकी सोच किताबों के बारे में क्या है, आपकी सोच आखिरत के बारे में क्या है, और आपकी सोच तकदीर के बारे में क्या है। ठीक है, आपकी सोच नबुवत के बारे में क्या है, वो रसूलों की सोच के अंदर वो शामिल हो गया। ठीक है ना, खत्म नबुवत के बारे में आपकी सोच क्या है, क्या नबुवत खत्म हो चुकी या नबुवत जो है वो जारी है। ठीक है, अभी भी कोई नबी आने बाकी है दुनिया में, और जो है नबी अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी भी आते रहे, क्या सोच है आपकी इसके बारे में। ठीक है, तो ये है अकीदा। तो सबसे पहली बदनी और जिस्मानी इबादत जिसका कि अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर हमें हुक्म दिया था ना, वो अल्लाह के बारे में अकीदा था। ठीक है, फिर उसके बाद वालिदैन के बारे में, वबिल वालिदैन एहसाना वाला हुक्म था, फिर हुस्न मुआशरत सिला रहमी, फिर उसके बाद तबजीर फजूल खर्ची से बचना, फिर पांचवा हुक्म था इक्तसाद में मियाना रवि। ठीक है, और फिर छठा हुक्म था कि औलाद को कत्ल मत करो, सही है, और सातवां हुक्म था कि जिना के करीब भी मत जाओ। ठीक है ना, जिना के करीब भी मत जाओ, जिना किसी दीवार का नाम नहीं है कि उस दीवार के करीब भी मत जाना, जिना किसी जो है ना वो दरख्त का नाम नहीं है कि दरख्त के करीब भी मत जाना, तो फिर क्या मतलब जिना के करीब भी मत जाओ, किसी दरख्त का, किसी दीवार का, किसी जगह का नाम तो नहीं है जिना कि उसके करीब भी मत जाओ। तो जिना के करीब भी मत जाओ का मतलब क्या है फिर, यानी ऐसी चीजों की तरफ मत जाओ, ऐसे कामों की तरफ मत जाओ, ऐसे माहौल की तरफ मत जाओ कि जहां पर जिना से बचना मुश्किल काम है, जहां पर जिना से बचना मुश्किल काम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेलफोन के ऊपर जो कि तुम्हारे अपने हाथ में है, उसके लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, तुम्हारे अपने हाथ में है वो सेलफोन, उस सेलफोन के अंदर ऐसी साइट्स के ऊपर मत जाओ, ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर मत जाओ, आईएमओ के ऊपर मत जाओ। आईएमओ पता है ना, बहुत सारे लोग उसको बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इतने गलीज किस्म की तस्वीरें और इतनी गलीज किस्म के एड्स होते हैं कि आईएमओ को इस्तेमाल मत करो। ठीक है ना, अगर तुमसे वो एड्स हैंडल नहीं हो सकते, अगर तुम्हें जो है वो उससे अपने आप को नहीं बचा सकते हो ना, तो आईएमओ का इस्तेमाल मत करो। वला तक्रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाओ, ऐसी किसी ऐप के करीब भी मत जाओ। ठीक है, तो ये हो गया सातवां हुक्म। फिर आठवां हुक्म था कत्ले नाहक, यानी किसी इंसान को जो है वो बगैर हक के कत्ल मत करो, और ये हक कौन डिफाइन करेगा, तुम खुद नहीं डिफाइन करोगे कि क्या हक होता है और क्या बातिल होता है, ये डेफिनेशन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे और अपने रसूल के जरिए से बताएंगे, कर चुके हैं और बता चुके हैं, कोई नया रसूल को थोड़ी आएगा हक बताने के लिए हमें। तो हक तो वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और सहाबाए कराम और उलमा ने हम तक पहुंचाया। ठीक है ना, उसको हक कहते हैं, ये नहीं कि मैं किसको हक समझता हूं और तुम किसको हक समझती हो, ये हक नहीं है। उसके बाद फिर नवा दसवां और ग्यारहवां हुक्म अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये है माली हुकूक के मुताल्लिक। तो यतीमों के, अच्छा दूसरों के माली हुकूक, पीछे जो था ना क्या कहते हैं इक्तसाद में मियाना रवि करना और फजूल खर्ची से बचना, ये अपनी जात के माली मामला से मुताल्लिक था। ठीक है ना, अपनी जात के माली मामला से मुताल्लिक था, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के माली मामला से मुताल्लिक था, क्योंकि अगर तुम फजूल खर्ची करोगे तो एक तो तुम खुद मुश्किल का शिकार हो जाओगे, दूसरे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी बीवी बच्चे जो है वो अगरचे कि अपनी जात तो नहीं होती लेकिन जात के बहुत करीब होते हैं, तो अपना घर, बीवी बच्चे भी अपने घर के अंदर होते हैं, तो उस वजह से पीछे वाली जो माली मामलात का जिक्र था वो अपनी जात और अपने घर से मुताल्लिक थे। अब जो माली मामलात का जिक्र हो रहा है ये बिल्कुल गैर लोगों के मुताल्लिक बात हो रही है। ठीक है ना, यतीमों के मुताल्लिक, तो भाई तुम्हारे बच्चे अगर यतीम हैं तो फिर अल्लाह रहम करे कि तुम जिंदा हो फिर भी तुम्हारे बच्चे यतीम हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। ये वर्चुअली तो होता है लेकिन फिजिकली ऐसा नहीं होता कि कोई बाप जिंदा है और फिर उसके बच्चे यतीम है। तो इस वजह से यतीम तो फिर गैर ही होता है ना, किसी दूसरे का बच्चा होता है ना जिसको कि यतीम कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरों के माली मामलात का जिक्र है, तो उसमें यतीमों के माल में एहतियात। इनमें पहली आयत में नवा हुक्म यतीमों के अम्वाल की हिफाजत और उनमें एहतियात का है, जिसमें बड़ी ताकीद से फरमाया कि यतीमों के माल के पास भी मत जाओ, यानी उनमें खिलाफ शरा या बच्चों की मसलहत के खिलाफ कोई तसरुफ ना होने पाए। ठीक है, क्या मतलब कि जब कोई यतीम, जब कोई इंसान मर गया, ठीक है, तो जिस यानी कोई मर्द मर गया, या अच्छा पहली बात तो सबसे अहम जो इसमें है वो ये है कि यतीम की तारीफ क्या होती है, शरीयत जो है वो किसको यतीम कहती है। ठीक है, शरीयत जो है वो उस बच्चे को यतीम कहती है कि जिसकी उम्र 15 साल से कम, 15 साल से कम, और ये 15 साल कमरी 15 साल, शमसी 15 साल नहीं। ठीक है ना, क्योंकि शमसी तो ये फिर हमने यूरोप से एक्वायर किया और ये बाद की चीज है। ठीक है ना, दीन इस्लाम के अंदर तो हिजरत के बाद से जो है वो कमरी साल का जमाना शुरू हो चुका, तो फुकहा ने जितने भी अहकाम दिए वो शमसी साल के हिसाब से तो नहीं दिए हुए, वो तो कमरी साल के हिसाब से दिए हुए। ठीक है, तो 15 कमरी साल से उसकी उम्र कम हो, और दूसरा क्या कि उसकी उसके बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल, माँ के इंतकाल होने पर किसी को यतीम नहीं कहा जाता। ठीक है, तो बाप इस दुनिया से चला गया और 15 साल से उसकी उम्र कम है। ठीक है, अच्छा ये है यतीम की तारीफ। तो जब किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता है तो उस बाप की विरासत जो है वो तकसीम, अल्लाह ताला तकसीम कर देते हैं, जैसी आंख बंद हुई उसकी विरासत तकसीम हो गई। क्या मतलब कि उसका जो उसके अगर दो बेटे थे तो एक बेटे को उसकी आधी विरासत मिल गई, दूसरे बेटे को उसकी दूसरी आधी विरासत मिल गई। ठीक है ना, अगर माँ थी तो माँ को जो है वो 8वां हिस्सा मिल गया। ठीक है ना, अब उसके बाद जो दुनिया में हम विरासत तकसीम करते हैं ना, वो हम तकसीम नहीं कर, वो हम जो है ना वो सिर्फ हैंडओवर कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हम हवाले कर रहे होते हैं। तकसीम तो अल्लाह ने कर दी, ठीक है, अल्लाह ताला के रजिस्टर के अंदर ये चीज लिख दी गई कि ये माल जो है ना वो इस लड़के का हो गया, ये माल इस लड़के का हो गया, ये माल बीवी का हो गया, ये माल जो है वो इस बेटी का हो गया, बस खत्म बात। ठीक है, अच्छा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो माल तो तकसीम हो गया, ठीक है ना, बच्चों की मिल्कियत में चला गया, बीवी की मिल्कियत में चला गया, अब उसको हवाले करें ना करें वो इंसानों का अपना फेल होता है, जिसके ऊपर उनको सवाब और अजाब मिलता है। अगर हवाले कर देते हैं तो सवाब मिल जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर हवाले नहीं करते बल्कि कब्जा कर लेते हैं उसके ऊपर तो अजाब मिलता है अल्लाह की तरफ से, खत्म बात, इतनी सी बात है। अच्छा, अब अगर बच्चे छोटे हैं, ठीक है ना, इतनी उम्र के हैं कि वो अपने माली मामलात को खुद से हैंडल सही तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। ठीक है, उनके हवाले तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनका नुकसान है, शरीयत जो है वो नुकसान नहीं चाहती। ठीक है, तो इस वजह से शरीयत ने वकालत का एक कॉन्सेप्ट दिया, वकालत का, कि किसी ऐसे शख्स को वकील बना दो उन यतीमों के माल का, कि जो के उनका खैर ख्वाह हो और जो के खुदा का खौफ रखता हो, और वो जो है ना इनके माल को मैनेज करेगा। ठीक है, तो अब इस शख्स के वकालत के अंदर उनका माल आ गया है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को यहाँ पे हुक्म फरमा रहे हैं जो के यतीम के माल का वकील बना दिया गया है, उस शख्स को हुक्म फरमा रहे हैं कि ला तकरबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दहु व अवफु बिलअहद। ठीक है ना, कि तुम जो है ना वो उनकी मसलहत के खिलाफ कोई तसरुफ नहीं करना उस माल के अंदर। ठीक है, तसरुफ का मतलब होता है कोई उसके अंदर से खर्चा वर्चा नहीं करना। यतीमों के माल की हिफाजत और इंतजाम जिसके जिम्मे है, यानी जो वकील है उन पर लाजिम है कि इनमें बड़ी एहतियात से काम लें, सिर्फ यतीमों की मसलहत को देखकर खर्च करें, अपनी ख्वाहिश या बेफिक्री से खर्च ना करें। और यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहे जब तक कि जवान होकर अपने माल की हिफाजत खुद ना कर सकें, जिसका अदना दर्जा 15 साल की उम्र को पहुंचना और ज्यादा 18 साल तक है। ठीक है, यहाँ पे हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने हुक्म लिखा कि 15 साल की उम्र के बाद तुम दे सकते हो उनको, लेकिन अगर तुम ये देखो कि 15 साल के बाद भी जो है ना वो जरा इस काबिल नहीं हो सके हैं कि वो अपने माल को सही से मैनेज कर सकें, तो 18 साल तक भी तुम इंतजार कर सकते हो। ठीक है, 18 साल के बाद उनके हवाले कर दो। लेकिन इन्हीं मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह पर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कोट करते हुए, और मुझे याद पड़ता है कि सूरह निसा की तफसीर के अंदर, ठीक है, लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये उम्र जो है ना वो 25 साल तक भी जा सकती है। ठीक है, कि 25 साल की उम्र जो है ना एक ऐसी उम्र है कि जिसमें कि वो फिर यानी बस उस वक्त तक भी वेट किया जा सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये, फिर असल जो मकसद है वो तो है खैर ख्वाही। ठीक है, असल मकसद है बच्चों को नुकसान से बचाना। ऐसे भी नौजवान होते हैं ना कि उनके बहुत सारा उनके पास माल आ जाए तो बुरे दोस्त उनके साथ लगे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बुरे दोस्त फिर उनको ऐशो इशरत की जिंदगी में लगा सकते हैं, ड्रग अब्यूज के अंदर लगा सकते हैं, शराब पीने के ऊपर लगा सकते हैं, या जो है वो इस किस्म के आइडियाज के चलो यूरोप चलते हैं, राइट, तुम्हारे खर्चे के ऊपर हम यूरोप चलते हैं, वहां पे अय्याशियां करके आएंगे। तो इस तरह से तो बाप का सारा माल जो उस यतीम को मिला था वो खत्म हो जाएगा। और ये वाली हरकतें जो हैं वो उमूमन 18 साल से ऊपर के लड़के ही करते हैं। ठीक है, तो अगर जो वकील साहब हैं वो ये मामलात देख रहे हैं ना उस यतीम के, तो उसको अभी हवाले ना करें। ठीक है, अच्छा, नाजायज तरीके पर किसी का माल भी खर्च करना जायज नहीं है। ठीक है, यहां यतीमों का खसूसियत से जिक्र इसलिए किया कि वो तो खुद किसी हिसाब लेने के काबिल नहीं, दूसरों को इसकी खबर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी यतीम तो क्या किसी बड़े ताकतवर इंसान का माल जो है वो आप उसकी इजाजत के बगैर खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, किसी बड़े अमीर कबीर, किसी सियासतदान, किसी फौज के अफसर, उसका भी माल आप नहीं चुरा सकते। चोरी तो चोरी होती है चाहे किसी की भी हो। ठीक है ना, तो यहां पर फिर अल्लाह ताला खास यतीम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का ये अंदाज है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो चीज ज्यादा अहम होती है या ज्यादा यानी मुश्किल होती है ना, तो उसका तस्किरा जो है वो अल्लाह ताला ज्यादा करते हैं। ठीक है, और अगर वो उमूमियत के अंदर शामिल थी भी, फिर भी उसका खसूसियत से तस्किरा कर देते हैं। जैसे यतीम का माल गलत तरीके से इस्तेमाल करना, तो ये यतीम के माल में चोरी होगी, तो भाई चोरी का हुक्म काफी था कि चोरी मत करो, तो उसके अंदर यतीम के माल की चोरी भी शामिल हो गई ना, यानी उमूमियत के अंदर, चोरी की उमूमियत के अंदर यतीम के माल की चोरी भी शामिल हो गई। लेकिन चूंकि यतीम का मामला ज्यादा सिवियर है, और क्यों ज्यादा सिवियर है वो अगले दो लाइन के अंदर आ रहा है, इस वजह से उमूमियत में शामिल होने के बावजूद उसका खसूसियत से जिक्र करेंगे। और ये चीज जो है ना वो हर यानी बहुत सारी जगहों पे कुरान मजीद में ऐसा ही है। ठीक है, तो अब क्यों है ये खसूसियत, इसके अंदर खसूसियत क्यों है? तो फरमाते हैं कि दूसरों को उसकी खबर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी यतीम इतना छोटा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके माल के साथ जो है वो अंकल क्या कर रहे हैं। जिस जगह कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करने वाला ना हो, वहां हक ताला का मुतालबा अशद हो जाता है। ठीक है, जहां कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करने वाला ना हो, वहां पे अल्लाह ताला का मुतालबा अशद हो जाता है, यानी अल्लाह ताला की जो कि जो डिमांड है ना वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें कोताही आम लोगों के हुकूक की निस्बत से ज्यादा गुना हो जाती है, यानी ज्यादा बड़ा गुना हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि गुना भी जो है ना वो भी तो उसके दर्जे हैं ना कि किस गुना के ऊपर कितनी बड़ी पिटाई लगे। सही है, तो एक आप गुना करते हैं उसके ऊपर जो है वो आपको एक डंडे से मार दिया जाता है, दूसरा गुना करें तो भाई वो भी तो गुना ही है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो आपको 50 कोड़े मारे जाते हैं। तो भाई एक डंडा मारना और 50 कोड़े मारना, इन दोनों में फर्क है ना? क्यों फर्क हुआ? गुना तो गुना होता है, क्यों फर्क हुआ? इसलिए कि गुना की सिवियरिटी, गुना की शिद्दत जो है वो बढ़ गई। उसी तरीके से जहन्नुम के अजाबों का भी कभी ऐसे ही मामला है कि किसी के लिए जो है वो कम दर्जे का अजाब है, किसी के लिए ज्यादा दर्जे का अजाब है, किसी के लिए जो है वो जहन्नुम का पहला दर्जा है, किसी के लिए दूसरा दर्जा है, किसी के लिए तीसरा दर्जा है, और किसी के लिए जो है जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा है। ठीक है ना, जो मुनाफिकीन है उनके लिए जहन्नुम का सबसे निचला निचला दर्जा है। तो दर्जात जो है वो गुनाह के हिसाब से अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाए हैं। अब यहां पर एक अहम उसूल फिर हमारे सामने आता है, ये जो जुमला है ना कि जिस जगह कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करने वाला ना हो वहां हक ताला का मुतालबा अशद हो जाता है। ठीक है ना, तो वैसे तो ये भी एक उसूल ही लिखा हुआ है, लेकिन इस उसूल को आप अगर मजीद आम कहना चाहें, आम अल्फाज में कहना चाहें, ठीक है ना, मजीद इसके अंदर जेनरैलिटी अगर पैदा करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसको किन अल्फाज में बयान किया जा सकता है, अगर आपने इसको भी बताए। ठीक है, ये जो उसूल हजरत ने यहाँ बयान किया ना कि जिस जगह कोई इंसान अपने हक का मुतालबा करने वाला ना हो वहां हक ताला का मुतालबा अशद हो जाता है, इसको मजीद जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कोई अगर आपने से ट्राई करे, मजीद उमूमियत इसके अंदर आप कैसे लेके आ सकते हैं इस उसूल में, जिसमें के फिर यानी सब कुछ शामिल हो जाए। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जहां पर कोई काम करने के लिए असबाब मौजूद ना हो तो वहां पर मुसब्बिबुल असबाब का अमल ज्यादा हो जाता है। जहां पर असबाब मौजूद ना हो तो वहां पर मुसब्बिबुल असबाब का अमल दखल ज्यादा हो जाता है। तो बल्कि इस तरह से कहेंगे कि जहां पर असबाब जितने कम होंगे ना वहां पर मुसब्बिबुल असबाब का अमल दखल ज्यादा होगा, और जहां पर असबाब ज्यादा होंगे वहां पर मुसब्बिबुल असबाब जो है ना वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना बैक स्टेज पे, अल्लाह ताला थोड़ा सा बैक स्टेज पे चले जाते हैं, क्योंकि असबाब अल्लाह ताला नहीं, वैसे तो असबाब भी अल्लाह ताला नहीं दिए हैं, ये कोई थोड़ी है कि असबाब जो है वो हमने खुद से बना लिए हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर। नहीं, जहां अल्लाह ताला ने असबाब दिए हुए हैं वहां पर अल्लाह ताला ना फिर मामला छोड़ देते हैं असबाब के ऊपर और खुद जो है ना थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। और जहां पे अल्लाह ताला असबाब जो है वो ज्यादा दे देते हैं, बल्कि जहां पे अल्लाह ताला असबाब जो है वो कम कर देते हैं तो वहां पे अल्लाह ताला जो है वो खुद ज्यादा आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यही वाली आयत, यतीम, तो भाई वो बच्चा यतीम कैसे हुआ, क्यों हुआ वो यतीम? अल्लाह ताला ने उसके बाप को दुनिया से उठा लिया ना, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने ही तो बाप दिया था, राइट? अल्लाह ताला ही ने तो बाप को सबब बनाया था ना औलाद तक माल पहुंचाने का, औलाद के मामलात को मैनेज करने का, अल्लाह ताला ही ने तो बाप को सबब बनाया था। और जब मौत आ गई बाप, तो मौत कहां से आई? अल्लाह की तरफ से ही आई ना। तो जब अल्लाह ताला ने सबब को हटा लिया, सबब को वापस बुला लिया, तो फिर अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो इस जगह पर फिर मामला खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसको ज्यादा पकड़ आएगी। उसकी पकड़ ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो यही मामला जो है ना वो फिर हर जगह चलता है। यहां पर तो सिर्फ यतीम की बात हो रही थी ना, लेकिन ये आम उसूल है, ये हर जगह चलता है। अब किसी को अगर थोड़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शगफ हो तो उसके लिए भी बड़ी जबरदस्त इसके अंदर मिसाल है। ठीक है ना, कि जब गजवाए बदर में मुसलमानों का और काफिरों का मुकाबला हुआ था तो वहां पर क्या हाल था कि मुसलमानों के पास असबाब तकरीबन ना होने के बराबर थे। दो तलवारें तो पता नहीं, दो घोड़े तो पता नहीं, है ना, बहुत ही, यानी असबाब थे ही नहीं, समझ लें। गजवाए बदर के अंदर असबाब थे ही नहीं, तो वहां पर अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, 100%। ठीक है ना, हत्ता के मुसलमान जो है ना वो अगर उसके पास तलवार होती भी थी ना तो उसकी तलवार काफिर को लगने से पहले ही फरिश्ता जो है वो काफिर को मार देता था। ठीक है ना, यानी इतनी इन्वॉल्वमेंट थी फरिश्तों की गजवाए बदर के अंदर कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तलवार से काफिरों को मरने ही नहीं दिया, फरिश्तों से ही मरवाया सबको। ठीक है, वहां पर बिल्कुल असबाब नहीं थे। ओहद के अंदर बढ़ गए असबाब, ठीक है ना, 700 मुसलमान हो गए, और ओहद में तैयारी करके गए थे, बदर में लड़ने की तैयारी ही नहीं थी। बदर में तो सिर्फ जो है वो काफिले को लूटने के लिए गए थे, तो लड़ाई की तो तैयारी नहीं थी। ओहद में क्या ऐसा था, नहीं, ओहद में तो बाकायदा मशवरा हुआ था, बाकायदा प्लानिंग हुई थी, बाकायदा जिरहें चढ़ाई गई थी, राइट, कम थी बेशक काफिरों के मुकाबले में, लेकिन थी। तो ओहद में जो है ना फिर मामला बदर के मुकाबले में कम था अल्लाह की इन्वॉल्वमेंट का, बदर के मुकाबले में। ठीक है ना, उसी तरह खंदक के अंदर कितनी असबाब इख्तियार किए थे मुसलमानों ने, कि खंदकें खोदी थी, है ना, इतनी बड़ी टीम थी, टीम एफर्ट हुई थी, बड़ी प्लानिंग हुई थी, बड़ी जो है वो जबरदस्त तरीके की जो है वो, ठीक है, अगरचे के काफिरों के मुकाबले में बहुत कम थी, लेकिन थी तो सही ना। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से मामला हुआ, हवाएं चला दी और ये हो गया वो हो गया, है ना, बड़ी मतलब गैबी इमदाद बड़ी जबरदस्त किस्म की खंदक के अंदर भी आ गई। ठीक है ना, बदर जैसी नहीं आई, ओहद जैसी नहीं हुई, लेकिन खंदक में उसके मुकाबले में कम हुई। यही सिलसिला आगे चलता रहा, मुसलमानों के असबाब बढ़ते गए, ठीक है ना, उसी तरीके से अल्लाह ताला की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम होती गई। हत्ता के मामला कहां पर हुआ, हत्ता के मामला पहुंचा जंगे मूता के अंदर। ठीक है, जंगे मूता के अंदर जो है ना फिर मुसलमानों के असबाब बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कैसे बढ़ गए थे, कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला जैसा सबब अता फरमा दिया। खालिद बिन वलीद, ये एक बंदा बंदे थे ये, लेकिन ये जो है ना वो हजार बंदों के ऊपर हावी थे। असबाब के एतबार से देखा जाए, क्या इनकी बैटल स्ट्रेटजी थी, क्या इनकी जो है वो ताकत थी, क्या इनका जोश और जज्बा था। ठीक है ना, जंगे मूता के बाद से जो है ना फिर मुसलमानों की लड़ाई का तरीका जो है वो एक पलटा खाता है। ठीक है ना, अब जो है वो असबाब के ऊपर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर जो है ना वो ज्यादा, यानी अमल दखल, असबाब का अमल दखल ज्यादा होता है, और जो है ना जो गैबी इमदाद वाला अमल दखल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पीछे हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अल्लाह ताला का सिलसिला चलता है। सही है, आपने क्या लिखा है, अस्हाबुल उखदूद के साथ भी यही मामला था। अस्हाबुल उखदूद के साथ ही वहां पे कौन सी लड़ाई हुई थी भाई, पता नहीं यार, बस वापस अस्हाबुल उखदूद से आपकी क्या मुराद है यहाँ पर, कि अभी तो हम जो है वो लड़ाई उड़ाई की बात कर रहे हैं। अक्सर ये बात भी सुनी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, मतलब जहां अपने छोड़ देते हैं या माँ बाप नहीं होते वहां अल्लाह ताला उसकी कफालत खुद फरमाते हैं, जिस सूरत में भी फरमाए। जी, ये वही मतलब होता है सारा ये बात बोलने का ना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ठीक है, तो अगर वाकई जिसका कोई नहीं होता तो फिर उसका वाकई फिर अल्लाह ताला होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक फिर वो फिल्मी, जो फिल्मी डायलॉग बन गया है ना, बल्कि गानों का भी डायलॉग बन गया है, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह, ठीक है, तो ये गानों के डायलॉग वाली हकीकत नहीं होती, ना फिल्मी डायलॉग वाली हकीकत होती है, क्योंकि होता सब कुछ है लेकिन बस जो है ना अपने आप को एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक बना करके बोलना शुरू कर देते हैं, मेरा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, है ना। तुम्हारी अपनी गुनाह, तुम्हारे अपने हरकतों की वजह से जो ना तुम्हारी ये हालत हुई भी होती है, और दिमाग में जोम क्या चल रहा होता है कि मेरा तो बस अल्लाह है, ठीक है ना। तो वो फिल्मी डायलॉग वाली बात सही नहीं। एनीवे, तो मजीद आगे लिखते हैं कि नाजायज तरीके पर किसी का माल भी खर्च करना, ये तो हो गया ना, ठीक है। इसके बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। आगे फरमाते हैं कि मुआहदात की तकमील और तामील का हुक्म, तो अब जो है वो 10वां हुक्म शुरू हो रहा है मुआहदात की, यानी औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, कि 10वां हुक्म अहद पूरा करने की ताकीद है। अहद दो तरह के हैं, एक वो जो बंदा और अल्लाह के दरमियान है, जैसे अजल में बंदे का ये अहद कि बेशक अल्लाह ताला हमारा रब है। इस अहद का लाजमी असर उसके अहकाम की अताअत और उसकी रजा जोई होता है, ठीक है। सबसे पहला अहद जो इंसानियत ने किया वो अल्लाह ताला के साथ किया, ठीक है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह ताला ने जब इंसानों की रूहों को पैदा फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ रख करके, उनके अंदर से जो है ना वो इंसान निकलना शुरू हुए और सारे के सारे इंसान जो है वो निकल करके आलमुल अरवाह के अंदर जमा हो गए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो किसी को पता ही नहीं था कि इसका जवाब क्या देना है, ये तो एक सवाल था, किसी को जवाब नहीं आता था। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो है ना वो जो इल्म अता किया गया उसकी बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बला या रब, ठीक है ना। इस जवाब को सुन करके सारी इंसानियत को इल्म हासिल हो गया कि अच्छा ये जवाब देना था। तो नबी अलैहिस्सलाम की सब ने इत्तबा करी और फरमाया कालू बला या रब, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के मुअल्लिम बन गए, मुअल्लिम बन गए, ठीक है, क्योंकि पहला इल्म जो है वो पूरी इंसानियत को नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से मिला, ठीक है। तो ये वादा जो है ना वो आपने मैंने सब ने पहले से अल्लाह ताला के साथ किया हुआ है कि हाँ आपको हमने रब मान लिया है, और रब का मतलब क्या होता है ये भी अल्लाह ताला ने हमारी गट्ठी घुट्टी के अंदर जो है ना वो डाल दिया है कि रब क्या चीज होती है। तो इस वजह से हम वो ये नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं रब का मतलब क्या होता है, इस वजह से हमने कोई वादा नहीं किया। भाई उस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला ने ये चीज सुझाई भी थी कि रब का क्या मतलब होता है। अच्छा, तो जानबूझ करके यानी समझते बूझते हुए फिर हमने अल्लाह ताला के साथ ये अहद किया है, ठीक है। तो इस अहद का लाजमी असर क्या है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसका नतीजा, कि उसके अहकाम की अताअत और उसकी रजा जोई, ठीक है, अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने की जस्तजू करना, जोई का ये मतलब होता है, ठीक है। जोई, जोई का लफ्ज जो है कहां से निकला, जो से, जो, ठीक है। जो का मतलब होता है कि किसी चीज को तलब करने वाला, जैसे कि दुआ गो, तो आपने सुना होगा ना दुआ गो, दुआ गो किसको कहते हैं, दुआ करने वाला, और एक होता है दुआ जो। दुआ जो का मतलब क्या होता है, दुआओं का तलबगार, दुआ सीख करने वाला, दुआ मांगने वाला, उसको दुआ जो कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से रजा जो कौन होगा, जो कि रजा तलब करने वाला हो, रजा की रजा सीकर, अंग्रेजी में उसको कहेंगे रजा सीकर, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रजा जोई, ये अहद तो हर इंसान ने अजल में किया है, हुआ दुनिया में वो मोमिन हो या काफिर हो, दुनिया में आकर के उसने इस अहद को तोड़ दिया तो वो काफिर हो गया, वो दुनिया में आकर के उसने इस अहद की तस्दीक कर दी तो वो मोमिन हो गया, ठीक है। इसी वजह से कोई भी, चाहे वो दुनिया में कहाँ कहीं भी रहता हो और उस तक कोई रसूल ना पहुंचा हो, उस तरह उस तक कोई मैसेज कुछ भी ना पहुंचा, फिर भी उसके लिए, फिर भी वो शिर्क करने के ऊपर छोड़ा नहीं जाएगा अजाब से, ठीक है, ये कह करके कि मुझ तक तो कोई रसूल ही नहीं आया, मुझ तक तो कोई पैगाम ही नहीं आया। भाई तुम्हारे तुम्हारे घुट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद को डाल दिया है, तुम्हारी फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने गूंद करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, ठीक ठीक है, तो उस फितरत के अंदर जो तौहीद मौजूद है उसका जो तुमने इनकार किया है ना शिर्क करके, इसके ऊपर तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, तो और ये कहां से आई, ये अल्लाह ताला का जो दीदार किया था ना योम अलस्त में, उस दीदार के वक्त हमारी फितरत के अंदर तौहीद आ चुकी थी, हम अपने रब की मार्फत उस वक्त हासिल कर चुके थे। तो दुनिया के अंदर काफिर कौन होता है, जो कि उसको छुपा देता है, उसके ऊपर मिट देता है, ठीक है ना, या उसका इनकार कर देता है, उसी को काफिर कहा जाता है। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे फरमाते हैं कि ये तो पहला अहद हो गया ना, ठीक है, अल्लाह ताला के साथ किया हुआ पहला अहद। दूसरा अहद क्या होता है, दूसरा अहद मोमिन का है जो शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाहु के जरिए से किया गया है, यानी जब कोई ईमान लेकर के आते हैं ना, वो क्या कहता है, अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ठीक है ना, ये जो कह देता है ना, तो ये इसने शहादत दे दी ना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, ठीक है ना। अब इस अहद का क्या हासिल है, उसका हासिल ये है कि अहकाम इलाहिया का मुकम्मल इत्तेबा और उसकी रजाजोई है, यानी रजाजोई तो यहां पर भी है, पहले भी रजाजोई थी, काफिर के लिए भी रजाजोई जो है वो लाजमी है, वो यही रजाजोई है कि ईमान लेकर के आए, ठीक है ना। लेकिन जो कोई ईमान ले आया, अब उसकी बात हो रही है, यानी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब जो है वो ईमान वाले हैं, तो हमारे ऊपर क्या अहद आता है, हुक्मों की अताअत, नमाज का हुक्म, राइट, और रोजे का हुक्म और जकात का हुक्म और हज का हुक्म और बाकी जितने भी अहकाम हैं, झूठ ना बोलने का हुक्म और धोखा ना देने का हुक्म और जितने अहकाम जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दीगर लोगों के ऊपर हमने जाने, उन तमाम हुक्मों का की इत्तेबा, ये हो गया पहली कस्म का अहद जिसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जो है वो उसको अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, और दूसरा हिस्सा जो है वो ईमान लाने के बाद वाला। फिर उसके बाद दूसरी कस्म का अहद, वो क्या है, वो है जो इंसान किसी इंसान से करता है जिसमें तमाम मुआहदात सियासी तिजारती मामलाती शामिल हैं, इंसान का इंसान के साथ अहद जो अफराद या जमातों के दरमियान दुनिया में होते हैं, ठीक है, इंसान या मुसलमान नहीं का इंसान, तो जिस इंसान के साथ भी किसी ने अहद किया है ना तो उसको पूरा करना, चाहे वो इंफरादी शक्ल में किया हो चाहे वो इज्तिमाई शक्ल में किया हो। अब उसकी तफसील में लिखते हैं कि पहली किस्म के तमाम मुआहदात का पूरा करना इंसान पर वाजिब है, और दूसरी किस्म में जो मुआहदात खिलाफ शरा ना हो उनका पूरा करना वाजिब, और जो खिलाफ शरा हो उनका फरीक सानी को इत्तला करके खत्म कर देना वाजिब है, ठीक है। पहली किस्म के मुआहदात जो अल्लाह के साथ किए थे, ठीक है ना, उनका तो पूरा का पूरा यानी उनको तो पूरा करना हर इंसान के ऊपर वाजिब है, लेकिन जो इंसानों के आपस में मुआहदात होते हैं ना उनमें शर्त यह है कि वो मुआहदा शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अगर शरीयत के खिलाफ है तो फिर उसको खत्म कर देना वाजिब है, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में बात हुई थी ना कि किसी औरत ने जो है वो किसी मर्द के साथ बगैर निकाह के ताल्लुक के वादा कर लिया कि जी हम इकट्ठे होंगे, तो भाई ये इकट्ठे होना जो है ना वो औरत मर्द का बगैर यानी महरम के ताल्लुक के या बगैर निकाह के ताल्लुक के ये हराम है, शरीयत के खिलाफ है। तो अब वो औरत ये कहे कि नहीं नहीं मैंने तो वादा कर लिया था ना, वादा तोड़ना तो बुरी बात होती है या वादा तोड़ना तो मना है, कुरान मजीद में है कि इन कि तुमसे वादा के बारे में सवाल किया जाएगा, तो इस वजह से तो मुझे तो जाना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं, ये गैर शरी वादा आपने किया है, इसको तोड़ना आपके ऊपर वाजिब है, ठीक है। या आपने अपनी औलाद से वादा कर लिया कि मैं जो हूं ना आपको टीवी ला करके दूंगी, टीवी जिसके अंदर के जो है वो चैनल्स आते हैं, ये एलसीडी स्क्रीन की बात नहीं हो रही, जिसको क्या आप अपने कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, जिसको क्या आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी कनेक्शन टू टेलीविजन स्टेशन या केबल नेटवर्क या सैटेलाइट नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आपने टीवी का वादा कर लिया है कि जी इस टीवी को जो है ना मैं आपके लिए खरीद करके ला के दूंगा, ये गैर शरी वादा किया आपने, तो इसको तोड़ना तोड़ना वाजिब है। ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा बच्चे का दिल टूट जाएगा या जो है वादा टूट जाएगा और अल्लाह ताला का हुक्म टूट जाएगा, कोई नहीं, बल्कि इसको इस वादे को तोड़ना जो है वो वाजिब है। बच्चों को बता दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फरीक सानी को इत्तला कर दें, यानी बच्चों को बता दें बेटा गलत वादा कर लिया, आई एम सॉरी, पहले अल्लाह से मुझे माफी मांगनी है, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें इस वादा करने के ऊपर, और फिर आप मुझे माफ कर दें कि मैंने आपसे गैर शरी वादा किया। ये नहीं कि मैंने आपसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, इसमें माफी नहीं मांगे, इसमें माफी नहीं मांगे कि मैंने आपसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, बल्कि इसमें माफी मांगे कि बेटा मैंने आपसे गैर शरी वादा कर लिया था, ये मैंने आपके साथ बुरा काम कर दिया, इसके ऊपर आप मुझे माफ कर दें, मुझे आपके साथ गैर शरी वादा करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? यानी गोया कि मैंने आपके लिए जहन्नुम का रास्ता हमवार कर दिया था, तो मुझे माफ कर दें कि मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है ना? मैंने आपके लिए जहन्नुम का इंतजाम करने का फैसला कर लिया था, इस पे आप मुझे माफ कर दें। सोचने का अंदाज होता है ना भाई, इस तरह क्यों नहीं सोचते कि जब अपने औलाद के लिए कोई हराम रास्ता इख्तियार करते हैं तो आप उसको जहन्नुम में धकेलने का इंतजाम कर रहे हैं, तो ये औलाद के ऊपर ज्यादती नहीं है, ये औलाद के ऊपर जुल्म नहीं है। तो भाई जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उससे माफी नहीं मांगता, तो बाप अगर अपनी औलाद के ऊपर जुल्म करे या माँ अपनी औलाद के ऊपर जुल्म करे तो उसको उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए, राइट? तो क्या है असल जुल्म? जहन्नुम की तरफ धक्का देना, इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है जो कोई माँ बाप जो है वो अपनी औलाद के साथ करें? तो जुल्म के ऊपर तो माफी मांगी जाती है ना, तो औलाद से माफी मांगना, ठीक है भाई? कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। तो जिस वादे का पूरा करना, अच्छा अब आप आगे फरमाते हैं कि जिस मुआहदे का पूरा करना वाजिब है, अगर कोई फरीक उसको पूरा ना करे तो दूसरे को हक है कि अदालत में मुराफ़ा करके उसको पूरा करने पर मजबूर करे। अदालत में मुराफ़ा क्या मतलब? कि अपने केस को जो है ना वो अदालत तक लेके जाए, ठीक है ना, शरी अदालत तक, या उस मुल्क के अंदर जो भी अदालती निज़ाम है ना, अब शरीय नहीं है तो अब क्या करें भाई, ठीक है? तो जो है बहरहाल उसी के पास ही जाना पड़ेगा, बेसिकली सालिस के पास, ऐसी अथॉरिटी के पास जो कि थर्ड पर्सन हो, जो कि आप दोनों के साथ फरीक ना हो बल्कि एक नॉन बायस किस्म की अथॉरिटी हो, तो वहां पे लेके जाना पड़ेगा और उसको पूरा करने पर मजबूर करना होगा। मुआहदे की हकीकत यह है कि दो फरीक के दरमियान किसी काम के करने या ना करने का अहद हो, और जो कोई शख्स किसी से यकतर, अच्छा ठीक है, यानी दोनों फरीकों के दरमियान अहद है कि भाई मैं फलाना काम करूंगा, या ये अहद है कि मैं फलाना काम नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है ना? ये दोनों वादों की शक्लें, करने का भी एक वादा होता है और ना करने का भी एक वादा होता है। तो करने का वादा किया लेकिन नहीं किया तो वादा तोड़ दिया। अब एक फरीक उसको, जिसके साथ वादा तोड़ा गया है, वो उसको अदालत में ले जा सकता है, ठीक है? तो यहां तक जो है ना वो हम फिर आज की क्लास रोकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट वगैरह करना है तो अभी पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा, तो उसमें कोई नई सूरत शुरू करने की बजाय जो है ना, इस साल यही इरादा है कि बस इन्हीं लेक्चर्स को हमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि भाई ये सारा का सारे कुरान मजीद है, ये कोई थोड़ी कोई हम रमजान मुबारक के अंदर कोई स्पेशल आयात अल्लाह ताला ने रमजान के लिए, रमजान के दरस कुरान के लिए नाजिल फरमाई है। तो पहले हमने ये किया था, वो कोई और वजूहत थी उसकी के सिलसिले को मौकूफ करके मतलब यहाँ पे छोड़ दिया था, और फिर जो है ना फिर हमने एक नई सूरत स्टार्ट कर ली थी, बल्कि एक्चुअली उसकी रीजन ये भी थी, अभी मुझे याद आ रहा है, कि मर्दों में भी एक सूरत चल रही होती है और औरतों में एक अलग सूरत चल रही होती है, तो बजाय इसके कि हम किसी एक को तरजीह दें दूसरे के ऊपर कि उनकी सूरत हमने रमजान में चलाई इनकी सूरत नहीं चलाई, तो हमने एक तीसरी सूरत शुरू कर ली थी, लेकिन इस दफा जो है ना वो यही इरादा हो रहा है कि जो चल रहा है उसी को चलाते रहें, देखते हैं किस तरह होता है, क्योंकि सूरह यूसुफ मर्दों में चल रही है, या तो दोनों को थोड़ा थोड़ा करके चलाएं या सी एक को चलाएं, इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल वगैरह नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। वाखिरु दुआना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।